أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النحل آية نمبر 65-79 واللہ اور اللہ تعالیٰ نے انزل من السماء نازل فرمایا آسمان سے ماء پانی فأحیا پھر زندہ کیا بھی ساتھ اس کے الارض زمین کو بعد موتها اس کی موت کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کرا یعنی اور پہلے کیا تھی وہ مردہ تھی پہلے وہ زمین مردہ تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ فرمایا اس پانی کے ذریعے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں اس میں آیت ہے ایک نشانی ہے کس کے لیے اس قوم کے لیے جو یسمعون جو سنتی ہے کا مطلب کیا ایک تو سننا ہوتا ہے نا کہ وہ سننا جس کے اندر انسان بس سن رہا ہے آواز ٹکرا رہی ہے اس کے کانوں سے اور بس ختم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتی ہے یعنی ایک ایسی قوم جو ایسے لوگ جو واقعی غور و فکر کے ساتھ سننے والے ہوں ایک ہوتی ہے ہیئرنگ اور ایک ہوتی ہے لسننگ لسن اور ہیئر کرنے میں فرق ہوتا ہے دیکھیں وہ تو جانوروں کے بھی کانوں سے آواز ٹکراتی ہے اور بلکہ کئی انسانوں کے بھی آپ دیکھتے ہیں بچے کبھی ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں کچھ کھیل رہے ہیں آپ ان کو بلاتے رہے ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ ان کو بلا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اب کانوں میں تو آواز جا رہی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ کانوں میں آواز نہیں جا رہی لیکن کیا ہے لسننگ نہیں ہو رہی لسننگ کیا ہوتی ہے غور سے سننا تو جو غور سے اس بات کو سنے گا اس کے لیے اس میں نشانی ہے کیا نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی آسمان سے پانی برستے ہوئے تو ہم دیکھتے ہی ہیں بارش کس نے نہیں دیکھی اور اس سے زمین کو زندہ ہوتے بھی دیکھتے ہیں زمین سے نباتات پیدا ہوتی ہیں اور ایک مردہ زمین پڑی ہوئی ہے بالکل بنجر زمین پڑی ہوئی ہے بارش ہوئی اور ہم کچھ دن بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں ہرے ہرے پودے چھوٹے چھوٹے پودے نکلنے لگتے ہیں تو اس میں کیا نشانی ہو گئی اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں جگہ جگہ سبق ہے بس ہم لینے والے بنے اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نظر دے کہ ہمیں واقعی سبق سمجھ میں آئے ہمیں اتنی حکمت دے اتنی عقل دے کہ ہم سبق لے کے اپنی زندگیوں میں ان کو اپلائی کر سکیں ہر چیز سبق دے رہی یقین کریں ساری کائنات ٹیچر ہے جو آپ کو سکھا رہی ہے کچھ نہ کچھ اب وہ الگ بات ہے کہ ہم توجہ ہی نہیں دیتے چلتے پھرتے جاتے ہیں ہمارے سامنے بارشیں ہوتی ہیں یہ سب ہم منظر دیکھتے ہیں اور کئی دفعہ دیکھا تو لیکن ہمیں کچھ اس سے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ کر کے ہمیں دکھا رہے ہیں دیکھو یہ جو آسمان سے پانی برستا ہے پانی کی مثال وحی کے جیسی ہے وحی بھی آسمان سے اتری ہے اللہ کا کلام بھی آسمان سے اترا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے زمین زندہ ہو جاتی ہے زمین کیا ہے انسانوں کے دل زمین زندہ ہو جاتی ہے یعنی مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں اس وحی کی بارش سے اور آپ نے دیکھا ہوگا کیسے جب سے آپ قرآن سے جڑے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کیسے واقعی ایسے لگتا ہے کہ اندر روح مردہ تھی دل مردہ تھا کیسے اس کو زندگی مل گئی مگر یہ یاد رکھیے گا کہ جس دل کے اندر خرابی ہو جس دل کے اندر بغض ہو حسد ہو کینے ہو دشمنیاں ہو نفرتیں ہو وہ دل اتنے گندے ہوتے ہیں کہ ان دلوں کے اوپر وحی کی بارش برسے بھی تو فائدہ نہیں ہوتا اس لیے جیسے آپ دیکھیں کہ بارش برستی ہے نا تو بعض ایسی زمین ہوتی ہے کہ جس پہ سبزہ نہیں اگتا وہاں پہ کیا ہوتا ہے کیچڑ اتنا اور زیادہ گندگی ہو جاتی ہے تو بعض دل بھی ایسے ہوتے ہیں قرآن کی وجہ نہیں ہوتی ہے قرآن میں نعوذ باللہ کوئی ایسی بات ہے کہ وہ ان کو نہیں بدل سکی نہیں ان کے اپنی جو دل کی زمین ہے اس کے اندر جب یہ ساری چیزیں گندگیاں بھری ہوئی ہیں تو اب قرآن پڑھ کے بھی کیا آتا ہے تکبر آ جاتا ہے ہٹ دھرمی آ جاتی ہے خود سری آ جاتی ہے کہ میں بڑی چیز بن گئی ہوں میں پتہ نہیں کیا ہو گئی ہوں میں دوسروں پہ دھونس جمع ہو رہی ہوں तो उल्टा फायदा कि वो इंसान फिर कीचड़ ही बन जाता, उससे किसी को फायदा नहीं हो रहा होता। वरना वैसे क्या है, ये मुर्दा दिलों की जिंदगी का सामान है, रूह को नई जिंदगी मिल जाती है। और जैसे जमीन लहलहाने लगती है, इसी तरह रूह खुश हो जाती है अल्लाह के कलाम के जरिए। और फिर देखिए वही जमीन, उससे जब सब्जा उगता है तो वो कैसे दूसरों के लिए फायदा मंद हो जाती है ना, लोग कितना फायदा उठाते हैं उससे। तो जब इंसान के दिल पे भी वही की बारिश होती है, वो दूसरे इंसानों के लिए फायदा मंद हो जाता है, वो दूसरे इंसानों के लिए नफा मंद हो जाता है, लोग उससे भलाई पाते हैं, ये कितनी बड़ी खैर है जो इंसान को मिलती है। ये सिर्फ इस वही की बारिश के जरिए हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने इस मिसाल को देके फरमाया, पानी कितना जरूरी है जमीन के लिए, इसी तरह तुम्हारे दिलों के लिए ये वही जरूरी है। जब तक वही की बारिश ना होगी, ये दिल जिंदा नहीं हो सकते। और अगली फिर, एक तो ये इतनी बड़ी नेमत तुम्हारे लिए बताई कि देखो अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत तुम्हारे लिए एक के बारिश की सूरत में, पानी की सूरत में तुम्हें अता फरमाई है। दुनिया में जमीन तो हरी भरी हो जाती है, देखो मुर्दा दिल कैसे जिंदा हो जाते हैं। और इसी से हमें ये पता चलता है कि बार दफा हम कई दिलों को सोचते हैं, ये तो कभी जिंदा नहीं हो सकता, इसका ये तो इतना खराब है, इसकी गुनाह इतने, इसकी फलां, ये तो ऐसी ऐसी है, बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। हमें नहीं पता कि किस दिल को अल्लाह ताला जिंदा कर दे वही के जरिए। ये जो वही है, ये ईमानी हरारत है, इससे जिंदगी मिलती है। जब मुर्दा जमीन जो बिल्कुल बंजर लग रही थी, जब वो जिंदा हो सकती है, तो इंसानों के दिल भी जिंदा हो सकते हैं। وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, और बेशक तुम्हारे लिए अनआम में इबरत है, एक सबक है, यकीनन एक सबक है। अनआम में क्या सबक है अब हमारे लिए? अनआम पहले तो कहते किसको है? अनआम है मवेशी जानवर कौन से? गाय, बकरी, भेड़ और ऊंट। मैंने आपको पहले बताया था कि ऊंट के बगैर अनआम नहीं होता, ठीक है? तो ऊंट उसके अंदर एक अनआम के अंदर एक जरूरी है कि ये होना, एक सबक है। क्या सबक है? नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनी है, हम पिलाते हैं तुमको उसमें से जो उनके पेटों में है, उसमें से पिलाते हैं। वो क्या चीज होती है? मिम बैनी फर्तिन व दमिन। अच्छा, अगर आप इसको ब्रैकेट में कर लें तो आपको आगे समझ आएगा। लबनन खालिसन, दूध खालिस। कहां से? दरमियान में से। मिम बैनी दरमियान में से, आप पीछे वाली बात पे आए। फर्तिन गोबर के, व दमिन और खून के, खून और गोबर के दरमियान में से खालिस दूध पिलाते हैं हम तुम्हें, जो कैसा है? साइगन लिश्शारिबीन, जो बहुत स्मूदली गले से उतरने वाला है, यानी बड़ा मजेदार है, बड़ा खुशगवार है, बड़ा लजीज है। क्योंकि वही चीज गले से जल्दी से उतर जाती है ना, जो बड़ी मजेदार होती है। आप देखें कोई शरबत, कोई ड्रिंक, कोई आपको बड़ा पसंद है तो वो फिर आप पीने लगते हैं, तो फिर आप ग्लास तभी रखते हैं जिस वक्त के खत्म हो जाता है। तो बहुत लजीज है ये पीने वालों के लिए। अब देखें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इसमें इबरत है। मैंने आपको क्या बताया, इबरत क्या चीज होती है? जो इंसान को एक हालत पे नहीं रहने देती, एक से दूसरी हालत पे ले जाती है। यानी ये बात सुन के इसके बाद लोगों के लिए इनमें इबरत है। ये बात सुन के आपको जैसे पहले थे वैसे नहीं रहना चाहिए, आपकी कैफियत बदल जानी है। और किस बात को सुन के? अल्लाह ताला ने देखो कैसे तुम्हारे लिए इन अनाम के पेटों में से, क्योंकि देखें बकरी भी दूध देती है, ये भेड़ का भी दूध होता है, ऊंट से भी दूध पीते थे, अब तो हमारे नहीं होता लेकिन हम तो सिर्फ गाय का ही पीते हैं, मगर इन जानवरों के दूध से वो फायदा उठाते थे। और एक सहराई बंदे के लिए आप सोचें, खाना और पीना ही, बल्कि पीना ज्यादा एक चीज होती है जो कि वहां पे बड़ी मुश्किल से हासिल होती है सहरा में, और उस वहां पे एक जानवर से ऐसा दूध मिल जाना, रेडीली अवेलेबल होना, फ्रेश दूध मिल जाना, खालिस दूध मिल जाना, जो दूध मुकम्मल गिजा है उसका मिल जाना, एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला की एक निशानी और अल्लाह ताला की एक नेमत है। हम तो चूंकि अब शॉप पे जाते हैं और जाके वहां पे फ्रिज में से निकाल के ले जाते हैं, तो हमें इतना शायद उस चीज का एहसास नहीं है कि ये क्या है। अब ये देखें कि ये जो जानवर हैं, ये ऐसे ही हैं जैसे चलती फिरती छोटी छोटी फैक्ट्रियां मिल्क प्लांट से लगे। जमीन पे जब वो प्लांट लगाने लगते हैं तो वो प्लांट पता है कैसे लगाते हैं, दूध पैदा नहीं कर सकते यहाँ पे, वो दूध लेकर आते हैं और उसको पैस्चराइज करते हैं, जो भी उसको प्रोसेस से गुजारते हैं और डब्बों में बंद कर देते, मगर कोई कहें कि दूध बना लिया उसने, वो तो पॉसिबल ही नहीं। आज तक देखे माँ के दूध का नेमल बदल नहीं ये ला सके, वो मानते हैं खुद ही के भाई हम वैसा ला ही नहीं सकते। इसी तरह इन जो चौपायों का दूध है इसका नेमुल बदल नहीं ला सकते, चाहे वो कोई पाउडर मिल्क कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इनका नेमुल बदल नहीं है। और तुम इस पे गौर नहीं करते कि ये कैसी फैक्ट्री है जिसके अंदर एक तरफ गोबर है, उसी के अंदर एक तरफ गोबर है, एक तरफ खून है, और निकल रहा है बीच में से दूध खालिस, और उस दूध के अंदर ना कोई गोबर की स्मेल है, वरना वैसे आप इनके वहां पे चले जाएं कभी जाके जरूर देखें कि इतनी स्मेल होती है कि पास से गुजरना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे गाय भैंसों का बाड़ा होता है, हम तो इन्हीं को देखा है, ऊंट और उनके तरफ तो नहीं गए, मगर वहां पे इतनी ज्यादा स्मेल होती है। अब आप खुद सोचें कि जिस पेट के अंदर ये सारा बन रहा है उसमें वहीं पे फर्श भी है, वहीं पे दम भी है, और बीच में दूध है, लेकिन कहाँ पे स्मेल है दूध के अंदर, कोई स्मेल नहीं, और खून भी वहां पे ही है, लेकिन कभी आपने रेड कलर का दूध देखा कि कहीं से कोई लीकेज हो गया है और जनाब वो उसमें मिल गया है और अब वो दूध जो है सॉरी ये तो खराब, इस तरह से रेड निकल आया, पिंक निकल आया। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह ताला की बड़ी निशानी। देखे हम पीते तो है दूध गिजा के लिए, हमें पता है गिजा है, मगर कितने लोग हैं जो इससे सबक भी लेते हैं, इबरत भी लेते हैं। रब फरमाता है कि ठीक है तुम खाओ पियो तो सही, मगर इसमें इबरत भी है, कोई है जो इबरत लेने वाला भी हो, कोई है जो दूध जैसी चीज निकाल सकता हो, कहीं बना सकता हो, और फिर इतने ये लजीज और फायदा मंद है। कुछ चीजें दुनिया में ऐसी होती हैं, लजीज तो होती हैं लेकिन उनके फायदे नहीं होते, उल्टा नुकसान दे होती है इंसान के। ये ऐसी चीज है जो इतनी फायदा मंद है कि खाने और पीने दोनों को किफायत करती है, यानी कंप्लीट एक रिजा है, कंप्लीट न्यूट्रिशन है। और तुम ये देखो कि जो अल्लाह ताला ने ये तुम्हारे लिए चौपाए रखे हैं, ना इनको लगाने के लिए कोई जमीन के ऊपर बड़ी जगह की जरूरत है कि कोई फैक्ट्री लगाई जाए फिर उसके बाद दूध हासिल होगा, ना कोई ऐसी मशीनरी बहुत बड़ी खरीदने की जरूरत है, ना कोई मजदूर हायर करने की जरूरत है कि जो इनको जो इन फैक्ट्रियों के अंदर काम करें और फिर वो दूध वहां पे प्रोड्यूस हो रहा। सिर्फ जानवर हैं जिनको थोड़ी सी कीमत के ऊपर आप खरीद लेते हैं, और फिर एक बंदा भी, इवन पुराने जमाने में तो औरतें भी उनको चारा, अभी भी गांव घर में औरतें भी चारा वारा दे देती हैं और बस तट से दूध निकाल लेते, ना इनको कोई खास मेंटेनेंस की जरूरत है। सिर्फ आप चारा डालते हैं, जो आपके फालतू चीजें होती हैं, भूस होता है, ये चारा होता है, अच्छी चीज तो आप खाते हो, उसको चारा डालते हो और देखो वो निकालता क्या है, निकालती क्या है, दूध, दूध जैसी गिजायत वाली चीज। लेती क्या चीज है, लेती काम है और देती बेहतरीन है। एक गाय कहते हैं कि 8 गैलन तक दूध देती है, तकरीबन उसके थनों में इतना भर जाता है एक दफा में, और 1 गैलन मोर देन इनफ है, जो जितना उसके बच्चे को चाहिए होता है उससे बहुत ज्यादा वो प्रोड्यूस करती है, और खा रही है सिर्फ चारा। लेकिन दूध के अंदर चारे का कोई जायका नहीं है, वरना चारा आप जरा चबा के देखें तो कैसा होता है, क्या होगा उसका टेस्ट। तो इतना मजेदार दूध आ रहा है, क्या कभी तुमने दूध पीते हुए रब को याद किया? हा? और क्या कभी तुमने सोचा कि ये चारा खा के दूध दे रही है और मैं उम्दा से उम्दा गिजा खा के अपने से क्या दे रहा हूं दूसरों को? नुकसान, बुरे आमाल, तकलीफ दे चीजें, मैं क्या देती हूँ दूसरों को? और देखो ये गाय क्या दे रही है दूसरों को, ये खा के क्या प्रोड्यूस करती है और हम खा के क्या अमल करते हैं। और फिर आप ये देखें कि फर्स और दम के दरमियान से दूध निकल रहा, तो फर्स और दम तो गंदी चीजें हैं, यानी गोबर है, खून है, इंसान का दिल नहीं चाहता देखने को भी, और उसके अंदर से ऐसी खालिस गिजा। इसी तरह इंसान के बुरे से बुरे हालात भी हो जाएं, गोबर और फर्श की तरह बुरे हालात भी हो जाएं, नामुवाफिक हालात भी हो जाएं, लेकिन ये अल्लाह ही है जो उन हालात में से उसके लिए कोई, जैसे दूध खालिस है ना, इस तरह से उसके लिए कोई ऐसे मुआफिक सूरत हाल पैदा कर दे, कोई अच्छे हालात निकाल दे, कोई अच्छी बात निकाल दे उसके लिए। ये जो रब फर्क और दम के दरमियान से ऐसा मजेदार दूध निकाल सकता है, वो मेरे और आपके गैर मुआफिक हालात में से कोई मुआफिक मुनासिब हाल हालात भी निकाल सकता है, बुरी सिचुएशंस में से अच्छी चीज भी निकाल सकता है, मगर इसमें गौर और फिक्र करने की जरूरत है। और तभी जब गौर और फिक्र करेंगे तभी इबरत लेंगे। इस मिसाल को सोचें और सोचें और इसमें से सबक लें अपने लिए, क्योंकि असल मकसद क्या है? सबक लेना। दूध तो काफिर भी पी रहा है और भी लोग पी रहे, ना समझ भी पीता है, बच्चा भी पीता है, लेकिन जो मोमिन होता है ना, वो अपने लिए हर एक चीज में से सबक निकाल लेता है। और ये अल्लाह ताला ने अपने एहसानात का एहसास दिलाया। आप ये कम अज कम एक काम करिएगा कि इस सूरत में से आपने जहाँ जहाँ पे भी लकुम 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 है, उनको सर्कल करना। आपको पता चलना चाहिए अल्लाह ताला ने आपके और मेरे लिए क्या क्या चीजें बनाई। ऐसा एक मशरूब बना दिया कि जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त से लेके बुढ़ापे तक ये दूध फायदामंद ही फायदामंद है। उसके लिए भी, बच्चे के लिए भी आसान है, फायदामंद है, बूढ़े के लिए भी लजीज फायदामंद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पे दूध के मामले में दुआ फरमाई है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वज़िदना मिन। वैसे जब बाकी खानों को खाया तो फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वआतिना खैरम मिन, अल्लाह हमें बरकत देना इसमें और हमें खिलाना इससे भी अच्छा, लेकिन दूध के मामले में ये नहीं फरमाया कि इससे भी अच्छा खिलाना, इसलिए कि दूध ऑलरेडी बेहतरीन गिजा है। जितना मैंने फरमाया अल्लाह इससे ज्यादा देना, ज्यादा की इसके लिए ख्वाहिश और दुआ फरमाइए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध इतना पसंद था कि दूध को इनकार नहीं करते थे, कोई दूध पेश करता था। और बहुत सारी अहादीस में आप देखेंगे दूध का प्याला आया, दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा थे तो वो कैसे भूख के साथ उनका हाल हो रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूध का प्याला आया, आपने बाकी सहाबा को बुलाया, सबने दूध पिया। और बहुत सारी आपको रिवायात मिल जाएंगी, ये बुखारी में भी है, तिर्मिज़ी में भी है, लंबी रिवायत है, अभी हम इसमें नहीं जा सकते। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कभी के एक खातून आई और नौ ज़िलहज अरफा के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध का प्याला पेश किया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध के को इनकार नहीं फरमाया करते थे, ये देखने के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा है या नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हज पे थे तो आपने दूध नोश फरमाया। तो इससे पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मरगूब था दूध। और जब मेराज पे भी गए तो बाकी चीजें जो पेश की गई, शराब भी, और तो उसमें दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको प्रेफर किया, दूध को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। इसी तरह एक रिवायत बुखारी में आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम جب مدینہ جا رہے تھے تو ایک چرواہے کے پاس سے گزرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی ہوئی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے کچھ دودھ دھویا، پھر میں وہ دودھ آپ کے پاس لے کر آیا، آپ نے وہ دودھ پیا حتیٰ کہ میں راضی ہو گیا. یہ جب ہجرت کے وقت کی بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے پینے کی چیزوں میں دودھ کا بدل کوئی چیز نہیں ہے. اب ہم نے تو دودھ کے بدل بہت سے بنا لیے ہیں نا، اور پھر اس کی وجہ سے دیکھیں ہمارے حالات بھی کیا ہو گئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ کا بدل کوئی بھی نہیں چیز ہے. اور یہاں پہ خاص طور پہ جو غور کرنے کی بات ہے وہ انعام پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. دودھ کے فوائد تو میرے خیال سب کو پتا ہوں گے، آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، بہت ساری آپ کو فائدے مل جائیں گے. لیکن جو چیز آپ کو حیران کر دیتی ہے وہ ہے اس دودھ کی پروڈکشن کیسے ہو رہی ہے، اور پروڈکشن کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. وہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان انعام کو ہمارے فائدے میں لگا دیا، اور ان کو نہ اور تو یہ کام کرتے ہی کرتے ہیں، ان سے ایک گوشت کھاتے ہو یا ان کے اوپر اپنا بوجھ ڈالتے جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، لیکن ان سے جو دودھ کی پروڈکشن آپ کو ملتی وہ کہیں سے بھی نہیں مل سکتی. اور وہ بھی کس راستوں سے ملتی ہے اس کو ذرا انسان غور کرے تو پھر بھی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ کس طرح تو نے یہ پیدا فرمایا، کہاں گوبر اور خون کا ذائقہ اور بدبو اور کلر، اور کہاں دودھ. اللہ اکبر. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، اور پھلوں میں سے کھجور کے، وَلَا عَنَاب، اور انگور سے، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اس میں سے تم بنا لیتے ہو میٹھا بھی مشروب اور رزقًا حسنًا. اب ہم اس کو نا دونوں دیکھیں گے، سکر کو آپ نشہ آور چیز، اس کے اس میں بھی دیکھیں گے کہ اگر ہم یہاں پہ لیتے ہیں اس کا معنی نشہ آور چیز کا سکر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی جو وانتم سکارا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم نماز کے قریب نہ جانا جبکہ تم نشے کی حالت میں. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نشے کے لیے سکر کا لفظ آتا ہے. سکر اصل میں ہر اس شراب کو کہتے ہیں جو انگوروں سے نچوڑی جاتی ہے. اور خمر، جس کو ہم اصل میں شراب کہتے ہیں، خمر بھی ایک سکر ہے، اس لیے کہ اس سے بھی نشہ ہوتا ہے. اور اصل نشے کی وجہ سے کوئی بھی چیز حرام ہے، نشے کی وجہ سے. ویسے تو جو شراب بھی ہے وہ بھی اسی سے انگوروں سے کشید کی جاتی ہے نا، لیکن سکر اس شراب کو ہی کہتے ہیں جو انگوروں سے نچوڑی جاتی ہے. مگر ادروائز جو بھی نشہ آور چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی سکر کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب بھی ایک ایسی حالت میں انسان کو لے جاتی ہے کہ اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے، نشہ جس کو کہتے ہیں وہ طاری ہو جاتا ہے، اور یہ حرام میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے. یاد رکھیں گے بات، ہم صرف شراب کو سمجھتے ہیں کہ شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. مگر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ڈرگز ہیں، چرس، افیم، پتہ نہیں کیا کیا جو بھی اور چیزیں، یہ نشے کی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، ہمارے گھروں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے جس کو ہم یہاں پہ ڈرگز کہتے ہیں، وہ ہمارے مذہب میں ہی حرام ہے. یہ تو ملک کے قانون تو بعد کی بات ہے، اور کئی اسٹیٹس میں کچھ چیزوں کو انہوں نے پرمٹ بھی کیا ہوا ہے کہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن ہمارے تو دین نے حرام کر دیا ہر نشہ آور چیز کو. تو یہاں پہ چونکہ یہ مکی صورت ہے، یہاں پہ یہ کہا گیا کہ تم اس سے بناتے ہو سکر. مکہ میں تو بھی شراب حرام ہی نہیں ہوئی تھی، وہ تو مدینہ میں آ کے ہوئی تھی. سورہ مائدہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس میں آیا کہ اب اس کے بعد یہ نشہ آور چیزوں کے حرام ہونے کا، شراب کے حرام ہونے کا. تو اس وقت میں حرام نہیں ہوئی تھی، مگر ابھی یہ پہلا حکم ہے جس میں بتا دیا گیا تم اس میں سے سکر بھی بناتے ہو اور اچھا رزق بھی بناتے ہو. اس کا مطلب ہے سکر اچھا رزق نہیں ہے، جب ہی اس کو الگ کیا گیا، سکر بھی بناتے اور اچھا رزق بھی. تو شروع میں ہی ایک طرح سے جو پہلی چیز تھی مسلمانوں کو تھوڑی سی سے کراہت دلانے کے لیے، تھوڑا سا اس کے لیے کہ یہ اللہ کی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، تو سکر بناتے اور اچھا رزق بناتے. अच्छी, मैं अगर मैं कहूँ अच्छी चीज बनाते हो और एक और चीज बनाते हो, तो उसका मतलब दूसरी चीज तो अच्छी नहीं है, क्योंकि अच्छी से अलग कर दिया गया। अच्छा, दूसरा अगर इसका माना हम लेते हैं इस माने में उसको कि ये एक स्वीट ड्रिंक है, तो इसमें से तुम स्वीट ड्रिंक्स भी बनाते हो, यानी कोई भी शरबत, जो आप तो नहीं शरबत बनाते हो, कोई आप स्मूदी बनाते हैं, कोई आप शेक्स बनाते हैं, और भी रिस्कन हसना और भी चीजें बनाते हैं आप, ये अंगूर से खजूर से कितना कुछ बनता है, खजूर भी मुकम्मल गजा है आपको पता। तो आप जब बना के उसके बाद हम कहते हैं कि ये हमने बनाया, मैंने बनाया, और सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं, हालांकि अल्लाह ने दिया, क्रेडिट अल्लाह को जाता है। आपने तो दो चार चीजें मिक्स करके और सोचा कि बस मैंने ही बना लिया, तो अल्लाह ताला को तो बिल्कुल ही बीच में से सोचते ही नहीं है कि उसने क्या चीज दी है हमें, और उससे ही हमने ये इस काबिल हुए हैं कि ये मशरूबात बना सके। तो अल्लाह ताला ने पहले दूध की बात फरमाई, अब और जो ड्रिंक्स हैं या फलों के जरिए और जो आप चीजें खाने पीने की बनाते हैं, अंगूरों से कितनी सिरका बनता है और कितनी चीजें बनती हैं जो फायदे की हैं आपके लिए, इसी तरह खजूर से, खजूर तो वैसे भी खा ले तो एक डिजर्ट है, तो फिर तुम सोचते नहीं हो कि कहां मिट्टी और कहां मिट्टी में से ये निकले हुए अंगूर और खजूर इतने स्वीट हैं, इतने मीठे हैं। तो मिट्टी तो मीठी नहीं होती, इसमें मिठास किसने डाल दी, तो मिट्टी को इस तरह किसने बना दिया। देखिए पौधा तो मिट्टी में उग रहा है, तो ये मिट्टी के अंदर क्या कोई शुगर थी कि जो उसने ऊपर भेजी और वो खजूरों के अंदर चली गई और अंगूरों में चली गई। लोग तो दुनिया में लाके हमारे मुल्कों में कोई इंजेक्शन ही लगा देते हैं शुगर के, उसको फ्रूट को, के अंदर से मीठा हो जाए, तो वहां पे कौन इंजेक्शन लगा रहा है इनको, कैसे मीठे हुए ये। तो वो रब जो मट्टी में से ऐसे फल उगा सकता है, वो रब जो मट्टी को ऐसा मीठा बना सकता है, वो हमारी फीकी जिंदगी को भी मीठा कर सकता है, वो इस जिंदगी में भी रंग भर सकता है, जो मट्टी में से ऐसे रंग निकाल सकता है। अंगूरों के रंग देखे कितने कितने प्यारे हैं, कितने सारे कलर के हैं, कहीं रेड है, कहीं ग्रीन है, कहीं मरून है, बहुत प्यारे प्यारे कलर के हैं। तो जो रब ऐसा कर सकता है ना, कहां मट्टी और कहां ये फल, वो हमारे लिए भी, हमारी इन जिंदगियों में भी मिठास भर सकता है। तो हर एक चीज के अंदर लेसन है। आप जब इन फलों को खरीद के लाएं और इसमें से मुख्तलिफ चीजें बनाएं, तो उस वक्त ये ना भूलें कि देने वाला कौन है। मैं तो स्टोर से ले आई, स्टोरों के ही नाम ना पूछते रहें कि भाई किस स्टोर से लाई हो, अच्छा ऑर्गेनिक है या क्या है, ये भी देखें मेरे रब ने क्या चीज कैसे पैदा की। और यही वो चीजें हैं, अभी हमने दूध पढ़ा, अभी हम इसकी इसमें से जो ड्रिंक बन रहा है, शराब भी बनती है और ये बाकी ड्रिंक्स भी, और फिर आगे हम शहद का पढ़ेंगे। तो ये सब नहरें होंगी जन्नत की, और दुनिया के अंदर तो कहीं गाय के पेट से दूध निकल रहा है और कहीं अंगूर से शराब बन रही है और कहीं शहद की मक्खी से शहद बन रहा है। यही हमारी आला से आला चीजें हैं जो दुनिया की, यही है जो हमारी बेस्ट है फूड्स। लेकिन जो जन्नत की नहरें होंगी वो भी सेम यही तीनों चीजें हैं, लेकिन ना तो वो दूध गाय के पेट का होगा, ना वो शहद शहद की मक्खी का होगा, और ना वो शराब ऐसे अंगूरों की होगी जो गले सड़े हों। सुभान अल्लाह, वहां के जो है वो तो अल्लाह ताला किस तरह बनाएगा, उसके कौन से बने होंगे, कैसे बनाएंगे, गायों से निकाल निकाल के दूधों की नहरें नहीं होंगी वहां पे। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन याक़िलून, इसमें उन लोगों के लिए एक निशानी है, उस कौम के लिए जो अकल रखती है। देखो जो अकल समझ रखते होंगे ना, वो समझ लेंगे कि नशा आवर चीज क्या है, इसे नशा भी बन सकता है और दूसरे ड्रिंक्स भी बन सकते हैं, फिर इसके हसन भी बन सकता है, और फिर ये जो ड्रिंक्स, अगर नशा की ना भी बात लें, जो भी ड्रिंक्स बनाए हैं किसी बंदे ने, स्वीट ड्रिंक बनाया, कुछ और ड्रिंक बनाए हैं, तो ये ड्रिंक मैंने कैसे बनाए, किन फलों से, वो जो स्टोर से, ग्रोसरी स्टोर से मैं उठा के ले आई हूँ, ये पीछे से कहाँ से आया, वो भी हमारी नजरों से इसलिए ओझल होता है कि हमने आज तक कभी ना दरख्तों से तोड़े, ना हमने वो दरख्त देखे, ना अंगूर की बेलें कभी देखी, बस हमें शेल्फ में पड़े हुए मिल जाते हैं तो हम कहते हैं फलां स्टोर के हैं, तो नाम बड़ा स्टोर का हो गया, फलां स्टोर पे फ्रेश मिलता है। अपना जो अल्लाह ताला ने दरख्त लगाए ना, इन पे तो फ्रेश ही रहते हैं, जब उतारो जितना वो फ्रेश है उससे ज्यादा फ्रेश को नहीं, तो अल्लाह ताला वहाँ पे कैसे फ्रेशनेस रख रहा है, वहाँ पे तो कोई फ्रिज नहीं, कोई कुछ नहीं है, अल्लाह ने दरख्तों पे ही फ्रेश रखा हुआ तुम्हारे लिए, जब तोड़ोगे लजीज और फ्रेश मिलेगा। तो इससे सोचते नहीं हो, इसे गौर नहीं करते तुम, अकल नहीं रखते तुम। जब इंसान जो अकलमंद है ना, अकल रखने वाला, ये अकल ही उसको जानवरों से मुमताज करती है। जानवर के पास भी आंखें कान दिमाग है, लेकिन वो दिमाग से सोचता नहीं है, इन आंखों से इबरत नहीं लेता, इन कानों से सुनता है लेकिन लिसन नहीं करता, हेयर करता। इंसान को इससे मुख्तलिफ होना चाहिए। एक गाफिल कौम ना बनो, अकल वाली कौम बनो। देखो कितने लोग खा पी रहे हैं, कितनी फरावानियां इन मुल्कों में खाने और पीने और दूध और इनकी है, शायद ही कहीं हो, हर एक के पास अवेलेबल है, लेकिन देखो कितने लोग हैं जो इबरत लेते होंगे। और अच्छा, एक और बात जो पीछे की इसमें रह गई, वो ये कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी ने अपना ख्वाब बयान किया कि मुझे ये ख्वाब आया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस और ख्वाब में क्या देखा था, ख्वाब में दूध देखा, और कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया और फिर अपना बचा हुआ दूध हजरत उमर को दिया। तो सहाबा ने इसकी ताबीर पूछी तो आपने फरमाया दूध से मुराद इल्म है, यानी अगर कोई अपने ख्वाब में दूध देखता है तो ये बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब इल्म मिलेगा। और वाकई इल्म जो है कितनी मुमासिलत है दूध के साथ। सिर्फ इसके अंदर एक बात करूंगी, दूध को भी अगर आप पड़ा रहने देंगे तो खराब हो जाएगा, राइट। इसी तरह इल्म को भी अगर आप आगे नहीं पहुंचाते, अगर आप इसको इसका दौर नहीं करते, अगर आप इसको स्टैग्नेंट रहने देते हैं तो खराब हो जाएगा, इसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा, ये काबिल नहीं रहेगा इस्तेमाल के। तो इल्म को भी स्टैग्नेंट नहीं करें, सिर्फ फायदा दें दूसरों को। अच्छा, आगे अब अगले ड्रिंक की बात आ रही है। सुभान अल्लाह, एक से एक बढ़ के ड्रिंक अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पैदा फरमा दिए। देखो अल्लाह की नियमतों को। अगला बेस्ट ड्रिंक आ रहा है वह औहा रब्बू का, और वही की तेरे रब ने, इलन नहली, शहद की मक्खी की तरफ, क्या वही की, अनितखीदी, के तू बना ले, क्या बना ले, मीनल जिबाली बुयूतन, पहाड़ों में से घर बना ले अपने लिए, और कहां घर बना ले, वह मीन शजरी, और दरख्त में अपने घर बना ले, वह यारिशून, और छतों में या जो चढ़ाते हैं या जो बेले हैं, छत हैं, शतीर हैं, छप्पर हैं, जो भी ऊंची करके ऊपर चढ़ा देते हैं उसमें सारी ये चीजें आ गई ना, तो जो भी कंस्ट्रक्शंस होती हैं आप देखें, उन कंस्ट्रक्शंस में ऊपर जाके जब वो ये जो डालते हैं बीम और वो डालते हैं, तो वो आपने देखा है कभी जाके शहद के छत्ते जो मक्खी के होते हैं वो अंदर जाके उन्होंने बनाए होते हैं वहां ऊपर ऊंची जगह में। तो ये अल्लाह ताला ने उनको वही की, वही का यहाँ पे माना क्या है, ये वही देखें, ये वो वही नहीं है जो पैगंबरों को की जाती, वही का मतलब एक होता है खामोश इशारा, कलामे खफी, छुपा हुआ, जिसको हम इल्हाम कहते हैं, कि अल्लाह ने दिल में डाला, जैसे उम्मे मूसा के दिल में डाल दिया था ना, कि मूसा अलैहिस्सलाम को पानी में डाल दिया, तो उनके पास कोई फरिश्ता थोड़ी वही लेकर आया था, वहां पे भी यही लफ्ज है। तो वो क्या है, दिल में इल्हाम डालना, सिखा देना किसी को। तो अल्लाह ताला ने देखो सिखा दिया इसको कि कैसे तुमने घर बनाना है अपने लिए, पहाड़ों में बनाओ, दरख्त में बनाओ, और जगह भी सिलेक्ट करके बता दी, और पहाड़ में इंसान के लिए पहाड़ पे घर बनाना मुश्किल, और ये कहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर जाके इन्होंने छत्ते बनाए होते हैं अपने। और देखो अल्लाह ने सिखाया और उसने कैसे सीख लिया, क्या वो हर जगह ये बनाती फिरती है। तो कमाल मक्खी का नहीं है, कमाल उस रब का है जिसने इतनी सी जान को भी सिखा दिया कि किस तरह तुमने ये बनाना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो मक्खी है ना, यानी चार चीजों को मारने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और उनमें जैसे कि चार ये जो चूहे सांप बिच्छू को और काटने वाले कुत्ते को मारने का बताया है ना कि इनको आप मार सकते हैं, इसी तरह चार जानवरों को कत्ल करने से मना किया। और उनमें है चींटी, शहद की मक्खी, हुदहुद और लटूरा। लटूरा एक ग्रीन कलर का छोटा सा परिंदा होता है और छोटे छोटे परिंदों का शिकार करता है। ये अबू दाऊद में और इब्ने माजा में। तो अब आप कहेंगे लो जी हमारे घर के अंदर चींटी आ जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो देखें जब घर में आ जाए और कोई जरर पहुंचाने वाली चीज हो तो फिर तो आप उसको मार सकते हैं। जाहिर है किचन में घुस रही, खाने में घुस रही है तो फिर आप उनको मारेंगे, मगर खुद से जैसे बाहर घूम रही हैं वैसे आप उनको जरा पहुंचा दें, वैसे ही पैरों के नीचे मसलते फिर चूटी जा रही है, आपने बस शौकी आई बस पैर के नीचे मसल दिया, तो फिर सही नहीं है। बिना वजह ना मारे। शहद की मक्खी बाहर घूम रही है, अब आपको पता नहीं क्या हुआ कि आप उसको मारने खड़े होगा, नहीं वो नहीं करना। और आप देख रहे हैं बहुत से लोग इतना डरते हैं शहद की मक्खी से, हालांकि मैं बताती रहती हूँ बच्चों को भी, करने की बात नहीं, आप जितना उसको ऐसे से यानी दूर करेंगे ना उतना ही वो आपकी तरफ को आके काटने की कोशिश करेगी, सोचेगी कि मुझे शायद कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना आप उसको छोड़ देंगे वो अपना रास्ता लेगी, कुछ नहीं कहती वो। और ये भी अल्लाह ताला ने जो उसको डंक दिया, देखिए हम आगे देखते हैं कि ये इसका भी क्या काम है। तो अभी ये देखें कि शायद की मक्खियों की ये जो दो किस्में होती हैं, एक वो जो पहाड़ों में जंगलों में घर बनाती हैं, और ये दूसरी किस्म वो होती है कि जो यानी ये छपरों में इस तरह इन जगहों पे मेमायारिशून जो है इन जगहों पे घर बनाती हैं, जो भी ऊंचे छप्पर होते हैं हमारे घरों में भी आके अपने छते बना लेती हैं। तो ये भी एक बड़ी जबरदस्त बात है, ये जो इनको घर बनाने का अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि अपने घर बनाओ। तो आप यानी हैरान होंगे इस बात को कि इसका घर बनाना मामूली बात नहीं है। वैसे तो और भी जानवर जो घर बनाते हैं, कईयों के एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उन्होंने घर बनाने का बताया, जो परिंदे घर बनाते हैं आप यानी हैरान हो जाएंगे कि वो किस तरह अपने घर बनाते हैं। हमने तो शायद इन चीजों का कभी गौर ना किया, कैसे उनके घोंसले होते हैं, क्या क्या चीजें ला के रखते हैं, उनको कैसे बनाते हैं, उसमें पूरी एक कारीगरी है। और शहद की मक्खी का जो छत्ता है ना, सुभान अल्लाह, ये इटसेल्फ एक यानी मिरेकल है। और वाकई अल्लाह ने वही की, वो इतनी सी मक्खी का क्या इतना दिमाग है कि वो इतना ऐसे घर बनाए। आपने देखा होगा कि उसकी जो शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है, इसके जो सारे खाने हैं वो हेक्सागन होते हैं, यानी सिक्स उसके यानी वो कोने होते हैं, सिक्स वो जिसको बच्चे भी हेक्सागन देखते हैं ना, सिक्स कोनों वाला। और इसमें सब जो कोने या एंगल्स होते हैं, आप खुद अगर बनाए हेक्सागन तो देखेंगे, हम पेंसिल से आप बना के देखिए, सब के एंगल्स ना डिफरेंट, कहीं से ज्यादा बड़ा एंगल हो जाता है, कहीं से कम हो जाता है, लेकिन इसके सारे बराबर होते हैं। एक इंसान एक कंपास और उस स्केल से लेके रूलर से लेके भी आप वैसा नहीं बना सकते, और एक थोड़ी बनाया होता है, कितने सारे होते हैं। अब इसको किसने मैथ पढ़ाया, किसने इसको आर्किटेक्चर सिखाया, किसने इसको बताया कि कितना किस जगह से होना चाहिए और किस इस शक्ल का ही बनाना है। और आपको पता है इस शक्ल के अंदर क्या खास बात है कि इसमें मैक्सिमम गुंजाइश होती है, यानी कोई जगह खाली नहीं बची। ऐसा नहीं होता कि यानी जैसे हम एक कमरे में लोगों को बिठाएं तो कोई बीच बीच में जगह खाली रह जाती, कहते भी नहीं आप जुड़ जुड़ के करीब करीब हो जाए फिर भी कोई कोना खाली रह गया, कोई जगह खाली रह गई, क्योंकि वो इस तरह की फॉर्मेशन नहीं होती हमारे कमरों की। इनके जो हेक्सागन होता है हर जगह काम आ रही होती, यूज में आ रही थी, यानी कम जगह में ज्यादा शहद आ जाता है, ये समझ लें। ये भी अब जाके साइंस और ये चीजें बता रहे हैं, उस वक्त किसने बताया कुरान में जो आया, शहद की मक्खी को किसने सिखाया, ये भी एक अनदर मिरेकल है कुरान का, कुरान की हक्कानियत के ऊपर। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं पता था कि ये इस तरह से है, और फिर आगे आप देखें कि आगे भी मोनस मक्खी का जिक्र आ रहा है जो कि शहद बना रही है, जबकि ये आज साइंस को पता चला है कि फीमेल मक्खी शहद बनाती, मेल मक्खी तो बनाती ही नहीं है। उस वक्त तो कोई इस तरह की चीज ही नहीं थी कि पता चलता कि ये मक्खी कौन सी है, मेल है कि फीमेल है। अल्लाह अकबर। फिर देखें कि इनकी एक क्वीन बी होती है और उसका जिस्म दूसरी सारी मक्खियों से बड़ा होता है, बाकी मक्खियां वर्कर मक्खियां होती है, क्वीन उनके ऊपर हुकूमत करती है और सारी मक्खियां उसकी ओबीडियंस करती है। अल्लाह अकबर, इतनी सी चीज है और उसको इतनी समझ देने वाला वो रब, क्या उसकी कुदरत होगी कि इतनी सी मखलूक के जहन में डाल देना कोई बात। हमें अपने बच्चे को ड्राइविंग सिखानी हो ना, वो हालांकि देखता रहा हमें ड्राइव करते हुए, तो कितना मुश्किल होता। और आप सोचें इतनी छोटी सी मखलूक है, उसका क्या ब्रेन होगा, क्या चीज होगी उसके, उसका क्या सर में, कितनी छोटी है उसका सारी क्या है, तो उसके अंदर क्या ब्रेन होगा, क्या अकल होगी, तो उसको इतनी समझ है। और फिर देखें सुभान अल्लाह, वो जो छत्ता है वो बनाती है, उसकी भी टेक्निक है बड़ी, कि वो उसको ना बाहर की तरफ से शुरू करती है, फिर अंदर की तरफ लेकर आती है, फिर वो जुड़ता है। आप जो सिलाई कढ़ाई वाले लोग हैं, उनको स्टिचिंग जो करते हैं उनको पता होगा कि देखिए हम जब कपड़ा भी सीते हैं ना, कहीं जोड़ लगाते हैं तो जोड़ कहीं छुपा के ही लगाने की कोशिश करते हैं कि पता ना चले, लेकिन जोड़ फिर भी नुमाया रहता है कि ये यहाँ पे जोड़ लगा हुआ है कपड़े। इनके छत्ते में आपको कहीं पता ही नहीं चलेगा कि इसको जोड़ा कहाँ से है इन्होंने। सुभान अल्लाह, साइंसदान भी आज इस पे हैरान है कि कैसे इनको ये हिसाब किताब आता है, कैसे ये अपना घर बनाती है, लेकिन इतनी अकल क्यों नहीं इस्तेमाल करते। वो कौन है जो इसको सिखा रहा है, कौन है जो इसको समझा रहा है, इतनी ऑर्गेनाइज्ड और इतनी प्लानिंग, और ये किसने सिखाई। हम तो अपना घर भी बना लेते हैं तो उसके बाद हालांकि हम कितने आर्किटेक्ट और इस तरह करके भी बनाएंगे, उसके बाद भी कहेंगे हाँ जरा सा असल में ऐसा बन जाता ना तो बड़ा अच्छा होना था, बड़ा फायदा होना था, बस उस वक्त हमें कहाँ समझ थी। लेकिन देखो ये इतना परफेक्ट घर बनाती, अल्लाह अकबर। और फिर देखो आगे, अभी इतनी वही मुकम्मल नहीं हुई, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम कुली, फिर उसको अल्लाह ताला हुक्म करते हैं खाओ मिन कुल समरात, हर किस्म के फलों में से। देखिए यहाँ पे यानी जिन से जो यानी मुनासिब है उसके लिए, फलों फूलों से जाके रस चूसती है, चीनी से नहीं कहा कि चीनी से ले लो, अब तो ये ऐसे बनने शुरू हो गए हैं हनी और वो के भाई चीनी कोई चीनी पे बिठा के मक्खियों को और उससे बनाने की कोशिश करते हैं, हर चीज तो हमने ना आर्टिफिशियल कर लिया। लेकिन अल्लाह ताला ने जो उसको हुक्म दिया हुआ वो ये कि तुम फलों से लो रस चूसो, फर्स्ट लुकी सुबुला रब्बी का जुलूला, फिर चलती रहो रब के बताए हुए रास्तों पे आसानी के साथ, मती हो के ओबीडियंट होके चलती रहो रब के रास्तों पे। यानी अल्लाह ने वो रास्ता जिस पे मक्खी ने चलना है वो उनके लिए आसान कर दिया, जुलू का एक मतलब ये भी है ना, आसान कर दिया और हमवार भी कर दिया, स्मूथ कर दिया, इसलिए कि वो पता नहीं कितने कितने रास्तों पे जाती है, उसको उन पे चलना है और वो उन्हीं पे चलती है जिन पे अल्लाह ने ताला ने उसको हुक्म दिया कि अब ये इनके ऊपर चलो। ये देखिए हमें कहाँ किसी ने बताना था, ये हमने कहाँ पता चलना था, अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में बातें बता दी कि वो उन रास्तों को ही फॉलो करती है, उसको ये प्रोग्राम किसने किया था कि आपने इन रास्तों को फॉलो करना। और सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलती है रास चूसने के लिए, हम तो जैसे अपना दिन ही 10 बजे स्टार्ट करते हैं तो फिर क्या उसमें बरकत रह जाएगी, ये अपना काम कब स्टार्ट करती है, अर्ली मॉर्निंग, और उसमें जिधर से सूरज की रोशनी आती है उधर को सफर करती है और अंधेरे से पहले पहले अपने घर आ जाती है और जिस छत्ते से गई होती है उसी पर वापस आती है, ये नहीं कि अब भूल गई है, जाते हुए कहीं से निकली और आते हुए किसी और के छत्ते में घुस गई, और अपनी आवाज के जरिए जो जी जी करती है आवाज, उसके जरिए इनको पता चलता है कि मैंने कहाँ जाना है, कौन सा मेरा रास्ता है। एक भिनभिनाहट सी होती है ना इनकी, उसी से जाती हैं और इन्हीं आवाजों के जरिए दोबारा छत्ते की तरफ लौटती। और फिर एक घंटे में 24 माइल्स का फासला तय करती हैं। ये भी साइंसदानों ने आज इस चीज को जाना है अब जाके कि ये इतना सफर करती है, इतनी मेहनत करती है, इतनी भाग दौड़ करती है शहद की मक्खी, इतनी नन्ही सी है, इतनी भाग दौड़ करती है कि अगर इसकी सारी जितनी डिस्टेंस ये अपनी पूरी जिंदगी में मुकम्मल करती है ना, अगर उसको मेजर किया जाए तो आपकी पूरी जमीन का एक चक्कर इसमें मुकम्मल हो जाए या उससे भी ज्यादा। और एक पाउंड शहद आप बोतल के ऊपर देखते हैं, 5 पाउंड की बोतल है, 3 पाउंड की बोतल दे दें, 1 पाउंड छोटा सा होता है थोड़ा सा, उसके लिए मोर देन 500 मक्खियां काम करती हैं और अपनी पूरी जिंदगी काम में लगी रहती है। और सिर्फ 6 वीक की एक मक्खी की जिंदगी होती, सिर्फ 6 वीक में इतना काम कर लेती। अल्लाह अकबर। और इतनी सी लाइफ में 30 लाख उड़ाने उड़ती है और 50,000 मील का सफर तय करती है, इतनी सी उसमें। और ये भी साइंसदानों ने अब बताया कि 1/2 पाउंड हनी के लिए 4 मिलियन फूलों का रस चूसती है, कितनी मेहनत है, 4 मिलियन। और देखें इतने टीम वर्क है इनका, एक इनका और एक मैंने देखा था, एक उन्होंने दिखाई थी फिल्म चींटियों का, चींटियों का भी इस कदर ऑर्गेनाइज्ड है कि आप देख के हैरान हो जाते हैं कि कैसे काम करती है। इतना जबरदस्त उन्होंने उनका दिखाया ना, उनका टीम वर्क, उनका किस तरह काम का तरीका है। या अल्लाह, इस मखलूक को हम तो क्या, हम अपने बच्चों को ट्रेन नहीं कर पाते, हम क्या किसी और को सिखाएं या बताएंगे, इस मखलूक को किसने सिखा दिया, ऐसा किसने ऐसा पढ़ा दिया, इतनी ओबीडियंस, इतना टीम वर्क। हमारे तो देखे इवन दीन वाले लोग भी जो है मस्जिदों में लड़ लड़ के हल्कान है, मैंने प्रेसिडेंट बनना, मैंने ये बनना, मुझे वो दो दो, उसकी टांग खेच रहे, उसकी टांग खेच रहे, ये तो अपनी क्वीन मक्खी की नहीं टांग खेच के जी मैंने मैं क्यों काम करूं, मैं वर्कर ही बनी रहूं सारी जिंदगी, तुम नीचे उतरो ना तो मैं बैठती हूँ यहाँ पे इस गद्दी पे, कुर्सी के लिए हम मरे चले जाते हैं, चाहे किसी जगह पे भी है, चाहे हम मस्जिद में है, किसी मदरसे में है, किसी स्कूल में है, किसी मुल्क में है, किसी जगह पे भी है, बस वो हुब्बे जा हमारी खत्म नहीं होती कि हमें बस कुर्सी चाहिए। तो ये तो ऐसा नहीं करती, अपने काम से काम, सुभान अल्लाह। और ये काम कैसे करती है, अब लेकर आती है वो जो चूस के अपना रस चूस के लेकर आती है और फिर लाके उसको शहद वो जो उसमें डालती हैं, अपने जो हेक्सागोनल जो छोटे छोटे खाने बनाए होते हैं अपने छत्ते में, उसमें डालती हैं। और कुछ मक्खियों का काम ये होता है, वो अपने परों से पंखा जलती रहती हैं उसको कि ठंडा करें उसको, और उसमें से जरा पानी भी वेपरेट हो जाए ताकि वो फिर एक थिक सा लिक्विड बन जाता है, थिक लिक्विड रह जाता है, पानी वेपरेट हो जाता है। और फिर उसके बाद कुछ मक्खियां उसको चूस लेती हैं उस वाले लिक्विड को, और मक्खी के मुंह के अंदर सुभान अल्लाह ऐसे ग्लैंड्स हैं फिर जो उसको शहद में बदल देते हैं। और आज तक इंसान बाहर ये ग्लैंड्स नहीं बना सका जिसके जरिए से इस तरह से यानी उसको कन्वर्ट किया जाए शहद में, और फिर वो उसको उसमें डालती है जो छत्ता है अपना जो उसके वो है। और एक मक्खी का ये भी काम होता है कि वो वैक्स से ना उसको कवर भी करती जाती है, जल्दी जल्दी उसको पैक भी करती जाती है कि कहीं कोई खराबी ना हो जाए। फिर कई गार्ड्स मक्खियां सुभान अल्लाह गार्ड करती हैं। देखिए वरना एक शहद जैसी चीज है, इतनी मीठी चीज है, आप अपने घर में रख लें, अगर चमची रात को छोड़ के गए सुबह को चींटियां उसके ऊपर आ जाएंगी, बाहर रख के देखें जरा आप, कोई चींटी नहीं है उसके ऊपर, कोई कीड़ा नहीं, इसलिए कि गार्ड मक्खियां जो गार्ड करती हैं उस छत्ते को। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इनको वो हथियार दे दिया ना, इतना सख्त वेपन दे दिया, डर के मारे कोई करीब ही नहीं आता, इसलिए दिया हुआ। वरना अगर वो ये वेपन ना हो तो सब चढ़ जाए उसके, कोई छोड़ेगा, चींटियां भी चिमट जाएंगी उसके छत्ते को और कीड़े भी आ जाएंगे और वो शायद तो हमारे खाने के काबिल ही नहीं रहेगा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ग्लैंड में भी अल्लाह ताला ने ऐसा सिक्रीशन रखा ना जिससे शहद बनता है। सुभान अल्लाह। और पैकिंग के लिए देखो कैसे अल्लाह ने निजाम ये रखा, यानी ये हम तो सोच सोच के ही बस हैरान होते रहते हैं। और खाते पीते तो आज तक रहे हैं लेकिन कभी इस चीज को नहीं सोचा कि देखो कैसे ये शहद बनता होगा। तो शहद की मक्खी से बनता, तो शहद की मक्खी से बनता कैसे? और देखिए ये सारा काम जो रब ने वही किया ना उसके जरिए कर रही है, इतना ऑर्गेनाइज्ड होके। वरना उसको खुद को क्या समझ है, वो तो थोड़ी इतनी माहिर है। अब इतने हम दिमाग वाले हो के, हमारा दिमाग तो मक्खी से ज्यादा अच्छा है, बड़ा है, अशरफुल मखलूकात है, हमें नहीं आता इस तरह शहद बनाना कि आज तक बना नहीं सके इंसान, तो वरना उसको कैसे आना था। अल्लाह तो ये देखें कि इनके अल्लाह ताला ने जो वही की कैसे उसके मुताबिक चल रही है, ये भी नहीं कि कुछ आगे पीछे करें, कुछ अपनी मर्जियां करें और काम मुसलसल करती रहती है सारी जिंदगी। ये भी नहीं कि अब हमने वेकेशन करनी है, लो अब हम काम ही करते रहें, अब हमें ऐसे चाहिए, तो अब हमें आराम चाहिए, तो अब ईद है, तो अब शबरात है, और अब ऐसे हमें तो अब देखना रमजान शुरू होना है, आधे लोगों ने वैसे ही सो के ही नहीं उठना, वो रोजा जो रख लिया, अब तो वैसे ही हम इबादत में है, सुस्ती ही नहीं खत्म होती आधे दिन तक, मुंह नहीं धोया होता, सारा दिन ऐसे ही फिरते रहते हैं, क्या काम करेंगे हम जिंदगी में? कम अज कम शहद की मक्खी से ही सीख ले। देखो जब एक मक्खी होके वो रब की वही के मुताबिक काम करती है तो तुम तो इंसान हो, इतना तुम्हारा ब्रेन है, इतने अपने आप को बड़ी चीज समझते हो, मक्खी को तो हकीर सी चीज समझते हो, तो फिर सोचो कि तुम कितना अल्लाह की वही के ऊपर चलने वाले, कितना उसके ऊपर अमल करते हो। वो तो अमल करती है, वो तो उन्हीं रास्तों पे चल रही है जिनको अल्लाह ताला ने उसको बता दिया कि इन पे चलना। और देखिए सुभान अल्लाह एक और बात इनकी खास है कि जिस फूल से फल से ये यानी चूस लेती हैं रस, तो वहां पे एक सेंट छोड़ देती हैं कि बाकी मक्खियों को पता चल जाए भाई ये इससे चूस लिया हुआ, अब अपना टाइम इस पे ना वेस्ट करना, ठीक है। और फिर कहीं पता चल जाए ना कि यहाँ पे कोई फूल है, कोई ऐसी कलियां हैं, कोई फल है, उनसे रस चूसना है, तो ये नहीं कि बस खुद ही चूस चास के अब चली जाए, नहीं, अब उनको पता है कि भाई वहां वालों को तो अभी पता ही नहीं है कि यहाँ पे ये सारा कुछ है, तो वो जाती हैं और सिग्नल देती हैं उनको, बाकी मक्खियों को। कैसे सिग्नल देती हैं? ऐसे उड़ उड़ के, और ना जैसे आप एट का निशान बनाते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे ऐसे उड़ रही हैं, कहते हैं इनको क्या हो गया, गोल गोल उड़ी जा रही, वो वैसे उड़ती भी इसी तरह है, उसमें गोल 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 उड़ती है ताकि हवा के प्रेशर को जो है ना वो ये उसमें बहुत मुआवन है, क्योंकि छोटी सी मक्खी होती है, हवा के प्रेशर से कहीं चली जाइए, तो ऐसे ऐसे गोल 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 जाती है हवा के प्रेशर के को फेस करने के लिए, यानी उसको उसको अवॉइड करने के लिए, सॉरी फेस तो नहीं, अवॉइड करने के लिए उसको। अच्छा तो अब वो आती है और आके उनको ऐसे सिग्नल देती है और उस सिग्नल में सब कुछ समझा देती है कि कहाँ पे है वो, कितने डिस्टेंस पे है, कितने कितनी किस क्या क्या है वहां पे, किस जगह पे है, वो सब उनको बता देती है बाकी मक्खियों को, और वो फिर वो समझ के और फिर वो वहां जाके वो भी रस चूसती है। आज हमें कोई खैर पता चल जाए कितनी कम दूसरों को बताते हैं, कहते हैं नहीं बिल्कुल ना बताना, सबको ही फिर पता चल जाना, सब ने वहां पे चल पड़ना, तो बिल्कुल नहीं बताने की जरूरत, बस अपने तरफ रखो, कोई खैर नहीं दूसरे को देना चाहते, और अगर कहीं देने के लिए तैयार ही हो जाए तो फिर कहते हैं पहले पैसे दो तो फिर बताएंगे। बस लोग अपनी रेसिपीज भी नहीं शेयर करते, अरे दे दी तो फिर क्या होगा, बस मेरे तक रहे, वो आपको भी तो कहीं से मिली, आपने भी तो कहीं से सीखा, और भी चीजें सिर्फ रेसिपी की नहीं बात में, और भी कोई चीजें, कोई भी खैर मिलती है, बच्चों के मामले में मिलती है, किसी मामले में भी कोई खैर मिलती है, नहीं बताते किसी, हम क्यों बताएं, सबको ना पता चल जाए, सबको ना ये मिल जाए, बस मुझे ही मिली रहे। देखो इनके अंदर कितनी बेलौस होके काम करती है, अगर इनमें भी मैं हो कि मैं बस को हूं, मैं बस हूं, तो फिर वो ये तो काम चल ही नहीं सकता, सब मिल के काम करती हैं, तब ये काम होता है। तो हमने मिल के काम करना कब सीखना, हमें तो मिल के काम करना आता ही नहीं, जब मिलेंगे उसी वक्त ही कोई ना कोई मसला, फलाने के साथ अब मेरी तबीयत नहीं मैच हो रही, तो अब उसके साथ बुराई, उसके साथ ये, उसके साथ प्रॉब्लम, उसके साथ लड़ाई, उसके साथ झगड़ा, उसके साथ मिलके चलना तो आता ही नहीं, اور پھر سخت محنت. سخت محنت کی اگر مثال دیکھنی ہے نا تو یہ مکھی کو دیکھ لیں. ساری زندگی محنت کرتی ہے. اور انسان تم یعنی اتنے اشرف المخلوقات ہو کے محنت سے ہی ہم دل کتراتے ہیں. خاص طور پہ مسلمانوں کی تو حالت یہ بالکل ہی محنت نہیں کرنا چاہتے. انتہائی زیادہ سستی ہے. کسی دن موڈ نہیں ہے, کسی دن یہ ہو گیا, کسی دن وہ ہو گیا, کسی دن ایسا ہو گیا. بس کہتے ہیں کام نہ کرنا پڑ جائے. اپنے گھروں کے کام اچھی طرح کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں نہ کوئی کام کرنا پڑ جائے. اس کو تو اللہ نے سکھایا, وہی کام کر رہی ہے. کبھی نہیں کہتی کہ میں آج ریسٹ کروں گی, میں اب ڈپریشن ہو گیا, اب میں بس آج میرا موڈ ہی نہیں ہے, اب فلانے نے مجھے یہ بات کہہ دی, اب میرا موڈ ہی خراب ہو گیا, اب مجھے یہ اس کی بات اچھی نہیں لگی تو میں بس اب بس چھوڑ رہی ہوں سب کچھ. نہیں, ان سے سیکھیں. شہد کی مکھی اتنا چھوٹا جانور ہو کے بھی ہمیں اتنا کچھ سکھا رہی ہے نا کہ یعنی آپ اگر ایک مکھی سے سبق لے لیں گے نا تو زندگی آرگنائزڈ ہو جائے گی. اور ہم قرآن کریم کے ساتھ جڑ کے بھی, اس کو پڑھ کے بھی آج تک آرگنائز نہیں ہوئے. اور یہ آرگنائزیشن کی بہترین مثال ہیں یہ مکھیاں. یہ آرگنائزڈ ہونا کیا ہوتا ہے اور آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرنا کیا ہوتا ہے اور دوسروں کو خیر پہنچانا کیا ہوتا ہے. ہم نے پہلے پڑھا تھا نا یہ بات, جب ضبط کی بات پڑھی تھی, جھاگ کی بات پڑھی تھی, تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کون باقی رہ جاتا ہے. ہاں, ما ينفعُ الناس فيمكث, جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہی باقی رہ جاتا ہے, باقی سب مٹ جاتا ہے. باقی کا سب ضبط ہے, جو اوپر اوپر ہے باقی نے مٹ جانا. یہ کیسے انسانوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے, کیسے فائدہ مند بن رہی ہے, ان کی پوری زندگی فائدہ ہے دوسروں کے لیے. کہ ہم اتنی لائف گزار کے بھی چلے جاتے ہیں اور بہت طرح سے ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں, کبھی سوچتے ہی نہیں کہ میری ذات سے کسی کو کیسے فائدہ پہنچ جائے. کوئی علم سکھا دو, کسی کے کام آ جاؤ, جو چیز بھی آپ کے پاس ہے وہ دوسرے سے شیئر کر لو. سوچو کبھی کہ میری زندگی سے فائدہ پہنچ جائے. میں کیوں فائدہ پہنچے, میں کیوں فائدہ مجھا, میرا ہی کام رہ گیا. اللہ اکبر. اور جو مخلوق سوچیں ہمارے فائدے کے لیے بنائے گی, ہمیں شہد دینے کے لیے بنائے گی, کتنی محنت کر رہی ہے وہ ہمیں شہد دینے کے لیے. ہاں, کتنی محنت کر رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا ہزاروں میل کا سفر طے کرتی ہے, اتنی محنت کر رہی ہے, اتنی یعنی دن رات ایک کر رہی ہے. اور ہم جس کے غلام ہیں اس کے راستے میں ہم کتنا خود کو تھکاتے ہیں, ہم کتنی عبادت میں یا اس کی فرما برداری میں خود کو تھکا تھکا کے یا بھاگیں دوڑیں لگا لگا کے ہم تھک چکے ہیں. یہ تو دوڑ رہی ہے, اللہ نے اس کو بنایا کہ میرے بندوں کے لیے شہد بناؤ. اب اس کو خود نہیں پتا, اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کس کے لیے کیا کر رہی ہوں. بس اللہ کا حکم ہے نا تو وہ کرتی ہی چلی جا رہی ہے, اللہ کے حکم کی فرما بردار ہے. وہ کر رہی ہے کام, کر رہی ہے کام, صرف مجھے اور آپ کو یہ شہد دینے کے لیے. خود تو اتنا نہیں کھا سکتی, انسانوں تک ہی پہنچ رہا ہے نا. آج آپ جتنا بھی شہد دیکھ رہے ہیں یہ ان مکھیوں کے ذریعے ہم تک پہنچ رہے ہیں, ہم کھا رہے ہیں, ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ تو ساری زندگی میں اتنی محنت کر کے خود اپنے لیے نہیں کرتی یہ سب, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اپنے رب کے لیے. بات سوچنے کی یہ, اس نے تو ساری مخلوق کو ہی ہمارے فائدے کے لیے لگا دیا. تم گائےوں بھینسوں بکریوں اونٹ ہو, تم دودھ پروڈیوس کرو, تمہارا گوشت یہ کھائیں, اس سے فائدہ اٹھائیں, اور سورج تم اس ٹائم پہ نکلو, اس ٹائم پہ غروب ہو, یہ آرام کر لیں, چاند تم نکلو کہ ان کے پھلوں میں رس ہو, ان کے پھلوں میں مٹھاس ہو, یہ چاندنی راتوں کے اندر اپنے چل پھر سکے, ستاروں تم ان کو ڈائریکشن دکھاؤ, شہد کی مکھیوں تمہیں بنایا ہے, تم شہد نکالو ان کے لیے تاکہ یہ شہد سے فائدہ اٹھا سکیں, پھلو پھولوں ان کو سب کو تمہارے لیے بنایا. تو تم کیا کر رہے ہو, تم بس آرام کرنے کے لیے آئے ہو اس دنیا میں. تمہارے یہ بہت سبق ہے. پھر شہد کی مکھی کا اس کام کو نا علم سے بھی مثال دی گئی ہے. علم سے کیسے, کہ دیکھیں آگے آئے گا کہ یہ بھی شفا ہے اور قرآن کریم بھی شفا ہے, اس کو بھی شفا کہا گیا. اور جو عالم ہے نا, عالم وہ بھی اسی طرح جیسے شہد کی مکھی مختلف پھلوں کے رس چوستی ہے اور پھر آ کے وہ شہد بناتی ہے، دوسروں کے فائدے کی چیز بناتی. اسی طرح جو عالم ہے، ٹیچر ہے، میں اپنی دیکھتی ہوں جب آپ کے لیے لیسن تیار کر رہا ہوں تو کتنی جگہوں سے جا کے رس چوسنا پڑتا ہے، کتنی جگہوں سے جا کے چیزیں چننی پڑتی ہیں، اس کتاب سے، اس کتاب سے، اس تفسیر سے، اس سے، کوئی خود سے تھوڑی بتا رہا ہوتا ہے، کہاں کہاں جگہوں سے جا کے لینا پڑتا ہے اور پھر جا کے وہ شہد بنتا ہے. تو ایک عالم کا کام بھی یہی ہوتا ہے اور محنت لگتی ہے اس میں، تب یہ پروڈیوس ہو کے آتا ہے سامنے، جس سے باقی انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے. آگے فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، وہ پھر نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے ایک شربت یعنی شہد، پھر ان مکھیوں کے پیٹوں سے نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں. آپ شیلف پہ جا کے دیکھیں تو مختلف رنگوں کی بوتلیں ہوتی ہیں، کہیں بہت لائٹ ہوتا ہے، کہیں ڈارک ہوتا ہے، کہیں بالکل ڈارک ہوتا ہے. تو یہ رنگوں کے فرق، ذائقوں کے بھی فرق ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں ذائقے رنگ فرق فرق کے رکھے. اور پھر فی شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یعنی یہ دیکھیں جسم کے آپ کی اس کے لیے شفا کا کام دیتا ہے شہد. اور اسی طرح قرآن جو ہے نا، اس کو بھی شفا کہا گیا نا، ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یہ شفا ہے، تو شفا نہیں ہے، شف شین کے نیچے زیر، یہ شفا ہے. یعنی قرآن کس چیز کی شفا ہے؟ وہ جو دلوں کے اندر بیماریاں وہ ان کی شفا ہے. جیسے یہ شہد ہے شفا تمہارے جسم کی بیماریوں کے لیے، اسی طرح یہ روح کی بیماریوں کی شفا ہے. اور یہ شہد جو ہے نا بہت زبردست علاج ہے. قرآن بھی سینے میں جو گند بھرے ہوتے ہیں ان کا علاج ہے. اللہ اکبر. اور دیکھیں جو شہد کی مکھی شہد بناتی ہے بالکل پیور ہوتا ہے، بالکل پیور. یہ تو اب ہم نے لیکن چینیوں سے شہد بنانے شروع کر دی ہے خود، اور جس چیزوں میں انسان آ گیا نا ان میں تو خرابی ہی لے کر آیا. آپ دودھ دیکھ لیں، بیچاری گائے تو خالص دودھ پروڈیوس کر رہی ہے، اس میں ہم پانی ملا دیتے ہیں، شہد وہ خالص شہد پروڈیوس کرتے ہیں. اب ہم نے ان کو بند کر دیا ڈبے میں اور چینی رکھ دی، نہ کوئی پھل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوا کہ وہ پھلوں سے، پھولوں سے، رس چوس سے اس کے اوپر چینی رکھ دی، اسی کے اوپر بیٹھ بیٹھ کے وہ بناتی جاؤ شہد. اور وہ شہد بھی بیکار ہوتا ہے، اس میں تو خالص شہد ہی نہیں ہے. تو جو چیزیں انسان بیچ میں اپنی انٹروینشن کرتا ہے نا، پھر اس کو خرابی کر دیتا ہے. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آیا نا قرآن کا، بالکل خالص ہے، بالکل خالص. اور اس خالص میں ہی شفا ہے. جب لوگ اندر اپنی اپنی چیزیں، اندر بدعات، اپنی اپنی اندر چیزیں شامل کر دیتے ہیں تو پھر وہ شفا نہیں رہتا، پھر اس سے فائدہ نہیں ہوتا. تو شہد میں یہ ایک بڑی خاصیت ہے کہ یہ یعنی جلدی پانی میں گھل بھی جاتا ہے اور بہت ساری چیزوں کے لیے فائدہ مند ہے، کئی بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے. شہد ایک ایز اے ڈرنک بھی پیا جاتا ہے اسی طرح اس میں ڈال کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو تندرستی پیدا کرنے والی چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، ایک تو ہنی شہد اور دوسرا قرآن. اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ بھی تندرستی دیتا ہے اور یہ بھی تندرستی دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ شہد کی مکھیاں جو ہے نا وہ انسانوں کی طرح لالچی نہیں ہیں. اگر انسانوں کی طرح لالچی ہوں تو وہ تو ایک دوسرے کو یہ ڈنگ مار مار کے مار دیں اور کہیں کہ میں ہی بس حکومت کروں اور میں ہی سارا شہد کھا لوں اور کسی کو نہ ملے اور بس میرا ہی سارا یہاں پہ چلے. وہ تو لڑنے لگتی ہماری طرح، تو خیر نہیں پہنچ سکتی تھی انسانوں تک. اسی طرح جب انسانوں کے اندر فساد، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنا، ایک دوسرے کو پیچھے کرنا، ایک دوسرے کے لیے کینے اور بغض رکھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا، اس چیز کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے اور الٹا ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا شروع ہو جائے، تو کبھی خیر نہیں پروڈیوس ہو سکتی، کبھی خیر نہیں نکل سکتی. پھر وہاں سے شر ہی نکلتے ہیں، خیر نہیں نکلتی، پھر برکت اٹھ جاتی ہے. اچھا، اور بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بھی پسند تھا، میٹھی چیزیں بھی پسند تھی اور شہد بھی پسند تھا. ये जो हमने हलवों वलवों की बात की थी वो हलवे नहीं, असल में तो आता है कि स्वीट यानी मीठा पसंद था सलम को। अच्छा वीर कहते हैं ये जो मेंटल एग्जॉशन हो जाती है इसके लिए भी शहद बहुत अच्छी चीज है। और भी शहद के बहुत सारे फायदे, अब तो काफी चीजें सामने आ चुकी हैं। देखें जितनी भी चीजें अल्लाह ताला की तरफ से बनाई गई हैं वो तो सारी फायदा मंद है, और जो हमने बना ली है इंसानों ने, चीनी बनाई, अब खुद ही कह रहे हैं चीनी बना के कि ये वाइट पॉइजन है। सुभान अल्लाह, वो जो खुद बनाते हैं ना वो उसके अंदर सारी कोई खराबियां ही हैं, और जो अल्लाह ताला की तरफ से है उन सब के अंदर फायदे ही फायदे, चाहे वो दूध हो तो, चाहे वो फ्रूट से बने हुए ड्रिंक्स हो या चाहे वो शहद जैसा ड्रिंक हो। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफक्करून, जो गौर व फिक्र करती है ना लोग उनके लिए इसमें निशानी है। इतनी सारी निशानियां आपको पता चली ना, हमने फिर क्या बनना है बताएं आप। इसके बाद जब ये आप देखेंगे, देखें एक मक्खियां होती हैं जो वैसे ही बेमकसद उड़ती फिरती हैं, गंदगी पे बैठती हैं और उनको आप मारते भी हैं, है ना, कोई रास्ता मुतय्यन नहीं, कहीं पे भी चली गई, कोई अच्छाई से दिलचस्पी नहीं है, वो तो कूड़ा कट गंद जो होता है बस उस पर होती है। लेकिन शहद की मक्खी ऐसी नहीं होती। आपको पता है अगर ये किसी गंदगी पे बैठ के आ जाए, वैसे तो नहीं बैठती, लेकिन यहाँ किसी जहरीले फल का या फूल का इसने रस चूस लिया तो वो जो गार्ड मक्खी है इसको अंदर नहीं एंटर होने देती। तो ये अगर ऐसे आ गई तो फिर सोचे ना सारा शहद ही खराब हो जाएगा, इतना ज्यादा गार्ड करती है ये, अल्लाह की तरफ से हमारे लिए प्रोटेक्शन है ना। तो यानी उन्होंने सिर्फ जाके सही अच्छी फल और फूल के ऊपर ही बैठना है। तो अब बताएं कि हमने क्या बनना है, क्या हमने एक बेमकसद और गंदगी पे बैठने वाली मक्खी, हर एक की गंदगियां चुनते रहना, हर एक की गंदगी को देखना, बस हर एक में उनको जो गंदगी है उसको हाईलाइट करना, जैसे वो मक्खी होती है वो जो जख्म होता है ना वहां जाके बैठती है, राहत आती है। तो हम भी कभी वैसे ही बन जाते हैं ना, लोगों की गंदगियों पे जाके बैठने वाले। और एक शहद की मक्खी है, उसकी कोई बेमकसद उड़ान नहीं होती, मकसद होता है, सुबह से निकलती है एक मकसद के साथ, एम इन लाइफ है, और कुछ करके जाती है, कुछ अच्छा करके जाती है, जो बाद तक लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, हनी खाएंगे लोगों को फायदा मिलेगा, उनके जिस्म में ताकत आएगी, उनकी बीमारियों को शिफा मिलेगी, से शिफा मिलेगी उनको, और कितनी उनके वजह से एक फायदा पहुंच रहा है इंसानियत को। तो या फिर हमने वो बनना है, और उसके लिए फिर अगर वैसा बनना है ना फायदामंद लोगों के लिए, तो बा मकसद जिंदगी गुजारनी होगी। फिर ऐसे नहीं हम कर सकते कि बस शुगल मेले में जिंदगी गुजारते रहें, फिर ये सोचना होगा कि जैसे शहद की मक्खी कोई ऐसा काम छोड़ गई जिससे इंसानियत को शिफा मिल रही है, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे लोगों को फायदा ही मिलता जाए, कोई ऐसा काम कर जाऊं बाद रहती दुनिया तक लोगों के लिए एक शिफा का बायस बने। और देखें वैसे हमें घुमंड इतना है कि हम इंसान है, और मैं तो चाहूं एक एक ताली के जरिए मैं मक्खी को खत्म कर दूं, अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं ना, मेरे पास ये डिग्री और मेरे पास ये वो और मेरे इतनी इंटेलिजेंट और इतनी मैं माहिर और मैं पता नहीं क्या चीज हूं। तुम्हारे अंदर तो मक्खी जितनी भी अकल नहीं है, अगर तुम्हारी जिंदगी बेमकसद है, और अगर तुम्हारी जिंदगी वो है जिसमें तुम रब के रास्ते से हट के चल रहे हो, तुम उसके फरमा बरदार नहीं हो जो रास्ता उसने बताया, मक्खी को पता है कि मैंने उस पे चलना और तुम्हें नहीं पता कि मैंने उस पे चलना, मक्खी अपना घर भी उसके हुक्म से बना रही है, रास्ते भी तय कर रही है तो उसके हुक्म से, अपनी पूरी जिंदगी उसके हुक्म पे चल चल के गुजार रही है, और हम आवारा फिर के गुजार रहे, बेमकसद चल के गुजार रहे, जिंदगी का कोई रंग ढंग ही नहीं, कुछ नहीं किया, ऐसे ही बेकार जिंदगी गुजार के दुनिया से चले भी गए। अल्लाह अकबर, पूरी जिंदगी, हालांकि एक मक्खी पूरी जिंदगी मेहनत करके ना हाफ टीस्पून सिर्फ हनी बनाती है, हम तो इतना हनी वैसे ही चमची पे लगा छोड़ के चले जाते हैं, कितनी मेहनत उसने की है, कितनी तनदेही के साथ वो काम करती है, चाहे आपकी पूरी जिंदगी लग जाए कुछ ना कुछ कारामद काम करके जाओ, चाहे वो थोड़ा ही हो छोटा सा ही हो। ہو مگر فائدہ مند ہو. کوئی بڑے بڑے منصوبے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ملین ڈالر ہی جمع کروں گی پھر اس کے بعد کہیں مسجد تعمیر کروں گی تو میرا کوئی کام ہوگا صدقہ جاریہ کا, تو اب میرے پاس اتنے فنڈ ہی نہیں. نہیں کوئی کس نے آپ کو کہا, آپ چاہے چھوٹا سا کام کرو, کرو کام کوئی. ایک بچے کو ایک سورت فاتحہ ہی آپ نے سکھا دی نا, تو ایک کام ہے, ایک شفا اس کو دے دی, ایک نسخہ اس کو دے دیا, ایک بھلائی کی چیز چھوڑ گیا. یعنی اتنا ہم کہاں سے سوچیں گے. پھر دیکھیں یہ گندی نہیں رہتی ہیں, اپنے چھتے کی بھی صفائی کرتی ہیں اور بیبی بیز کو کھلاتی بھی ہیں جو پیدا ہوتی ہیں. آم کہیں اب ہم نے تو یہ کام شروع کر دیا تو اب تو ہم نے کچھ اور دیکھنا ہی نہیں, اب میرے اوپر نہیں کوئی ریسپانسبلٹی, اب کوئی اور ہی دیکھے. نہیں کتنا کام کرتی ہیں, ان کی ساری زندگی کام ہی کام ہے. اور مونس مکھی کام کر رہی ہے, مذکر مکھی تو صرف وہ فرٹیلائز کرنے میں ہی اور بچے پیدا کرنے کے اندر وہ کرنے کا کام کرتی ہے, جو کام اس کا ہوتا ہے میل کا, اس کے علاوہ وہ کوئی کام نہیں کرتی, سب کام مونس کر رہے ہیں. تو مونس بہت کچھ کام کر سکتی ہے. دیکھیں پہلے کیا آیا تھا کہ مونس کو برا سمجھتے ہیں, لڑکیوں کو دبا دیتے ہیں یا ان کو ذلت سمجھتے ہیں. دیکھو جو دودھ بھی آ رہا ہے وہ بھی مونس سے آ رہا ہے, جو شہد بھی بن رہا ہے وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. فیمیل فیمیل کوئی ایسے ہی نہیں ہے. اسی طرح ہمیں آج یہ سمجھنا چاہیے کہ آج جو قرآن کے لیے کام, دین کے لیے کام ہے, اس میں بھی فیمیل اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے میں کیا کر سکتی ہوں, مجھ سے میں تو آئے میری کیا ہستی ہے, میں تو ایک عورت ہوں, میں تو نہیں. اب بہت کام کر سکتی. دیکھیں شہد کی مکھیوں کو کیسے کام کرتی ہیں اور پوری زندگی کام کرتی ہیں. تو قرآن کا کام بھی تم نے کرنا ہے تاکہ آگے نسلوں تک پہنچے. اس شفا کا کام بھی تم کرو, مفید بن جاؤ لوگوں کے لیے, فائدہ مند بن جاؤ لوگوں کے لیے. تو اس میں تو اتنی نشانیاں ہیں, اتنی اس کے اندر باتیں ہیں کرنے کے لیے, لیکن غور و فکر کی ضرورت ہے. غور و فکر کیسے ہوتا ہے؟ اب انسان علم لیتا ہے اور سوچتا ہے پھر اس پہ. یہ اللہ نے اگر مکھی جیسی چھوٹی سی مخلوق سے شہد بنانے کا کام لے لیا تو اللہ مجھ سے بھی کوئی کام لے سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے راستے میں اس طرح سے بھگا سکتا ہے, دوڑا سکتا ہے, اڑا سکتا ہے جیسے یہ مکھی اڑ رہی ہے. تو اللہ مجھے بھی اپنے کام کا بنا لے, اور وہ جیسے پیور چیز کرتی ہے, پیور کام کر رہی ہے, اللہ مجھے بھی اسی طرح پیور کام کرنے کی توفیق دینا. تو اس میں شکوک و شبہات, اس میں دوسری ادھر ادھر کی چیزیں, آج دین کے نام کے پر کتنی خرافات ہیں, کتنی بدعات ہیں. اللہ نہیں مجھے خالص کام کرنے کی توفیق دینا جو شفا بن جائے انسانوں کے لیے, وہ کام کرا لینا مجھ سے. اور جس رب نے سوچیں جسم کی شفا کے لیے اتنی پیاری چیز, اتنی مفید چیز پیدا فرما دی مکھیوں کے ذریعے, وہ رب کیا ہماری روح کے فائدے کے لیے کوئی چیز نہ دے گا ہمیں؟ اس نے دیا ہے قرآن, اسی لیے دیا, اس سے بھی آپ فائدہ پاؤ گے. اب ہنی کے فوائد تو آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے کہ انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں, اس پہ دیکھیں, لیکن قرآن کے فائدے وہ نہیں کسی کو پتا. وہ زبانی کلامی پتا ہے جو مسلمان ہیں, زبانی کلامی بس ایک دوسرے کو کہتے رہیں گے ہاں قرآن میں بڑی برکت, قرآن میں بڑی خیر. اور برکت اور خیر اگر اتنی ہے اور آپ اس میں سچے ہو تو پھر تمہاری زندگی میں کدھر ہے قرآن؟ تم کہتے ہو نا بڑی برکت, بڑی قرآن تو بڑی, اللہ کی بیسٹ کتاب, فلاں یہ وہ, جو باتیں اتنی کر رہے ہو, اگر تمہیں یقین ہے نا اس بات کا تو پھر بتاؤ تمہاری زندگی میں قرآن کتنا ہے, یہ اس کا جواب دو, ورنہ تو تمہاری بات جھوٹی ہے. اور ٹیم ورک, یہ کلاس کے لوگوں کو بھی نہیں کہتے, ٹیم ورک سیکھنا ہے نا قرآن سے سیکھ, مکھی سے سیکھ لیں. اور جو بڑا بننے کا شوق ہے وہ چھوڑ دیں, کیونکہ یہ اگر یہ شوق پال لیں گی شہد کی مکھیاں, یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو ہی نہیں سکتی, پھر یہ کام نہیں ہو سکے گا. بس میں کروں, میرا نام بڑا ہو جائے, میں آگے ہو جاؤں, میرا سب کو میرا پتہ چل جائے, मैं उससे काम जाया हो जाता, अल्लाह के यहाँ कबूल ही नहीं होता। अल्लाह अकबर। बहुत से फवायद इसके यहाँ हदीस से आपको एक दो फायदे बता देती हूँ, वैसे तो आपको माशाल्लाह सबको उससे ज्यादा फायदे पता है, मगर थोड़ा सा जो शिफा की बात आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया ना कि हर बीमारी की दवा है, हर बीमारी जब दवा सही हो तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल मरीज के हुक्म से, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से मरीज को शिफा मिल जाती है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। इसी तरह जो बाज लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं इलाज नहीं कराने की जरूरत, बस अल्लाह के ऊपर तवक्कल करो, ये करो वो करो, तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में यहाँ पे शिफा का लफ्ज ला के बता दिया हमें, सिखा दिया हमें कि नहीं, बीमारी का इलाज कराओ, इसको शिफा के लिए यूज करो। ये बैठ के सोचना कि ये अल्लाह के ऊपर मैं तवक्कल कर रही हूँ, ये मैंने कोई इलाज नहीं कराना, ये दुरुस्त नहीं है। आप देखें शहद को शिफा कहा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलौंजी को मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा करार दे दिया सही मुस्लिम में। फिर एक आदमी आया था, उसने कहा कि मेरे भाई को यानी डायरिया लगा है, दस्त लगे हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको शहद पिलाओ, उसने उसको शहद पिलाया। फिर आके उसने कहा कि मैंने उसको शहद पिलाया तो वो तो और बीमारी बढ़ गई, और ज्यादा उसको डायरिया तेज हो गया। आपने 3 बार इसे यही फरमाया शहद पिलाओ शहद पिलाओ। जब वो चौथी दफा आया आपने फरमाया इसको शहद पिलाओ, उसने कहा मैंने इसको शहद पिलाया था मगर और बढ़ गई। आपने फरमाया अल्लाह की बात सच्ची है, तुम्हारे भाई का पेट झूठा है। उसने फिर जाके अपने भाई को शहद पिलाया, उसके बाद उसके भाई को शिफा हो गई। शिफा के बारे में देखें, इलाज कराने को कभी भी इसको बुरा ना समझें, क्योंकि इसलिए मैं ये बात आपको कह रही हूँ क्योंकि बाज लोग दीन में ऐसे हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं आपको इलाज नहीं कराने की जरूरत होती, आप इलाज ना कराएं, बस आप बस अल्लाह के ऊपर भरोसा करें। इलाज कराना इसका मतलब है कि आप तवक्कल के खिलाफ हैं, आप तवक्कल नहीं कर रहे अल्लाह पे, तो ये बात गलत है। आप देखें ये उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बुखारी और मुस्लिम में फरमाया था बुखार जहन्नुम के जोश में से उसको पानी से ठंडा करो, और आज भी आप देखें पानी के जरिए इसका इलाज किया जाता है कि बुखार ज्यादा तेज हो तो कहते हैं शावर के नीचे खड़ा कर दो, पानी में इसको यानी पानी के जरिए ठंडा पानी डालो, तो इसमें आपके जिस्म के लिए जिस्मानी बीमारियों के लिए शिफा है। और ये अल्लाह का कलाम कह रहा है कि शिफा है तो शिफा है, और हम इस पे ईमान लाते हैं।